نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقت کی قدر کیجئے. اس میں سے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وقت کے بارے میں مسلمان کی ذمہ داری. پہلی ذمہ داری کیا دیکھی تھی؟ کہ وقت سے فائدہ اٹھانے کی حرص رکھیے, کبھی نہ یہ کہیں کہ وقت بس جیسے تیسے گزر جائے. دوسری چیز ہم نے دیکھی تھی وقت پاس کرنے والے, یعنی کچھ لوگ صرف اس لیے جی رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی موت کا وقت نہیں آیا. تیسری چیز دیکھی تھی خالی وقت کو غنیمت جانے, چھوٹے چھوٹے جو سلاٹس ہوتے ہیں نا ان کو بھی استعمال کریں. آج ہم اس میں سے چوتھا نقطہ دیکھیں گے, خیر کے کاموں میں سبقت. خیر کیا ہوتی ہے؟ بھلائی. مال کو بھی خیر کہتے ہیں, لِخُبِّ بِالْخَيْرِ رَشَدِید, اور خیر خیر کو بھی کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں سبقت کے لیے ایک ایمان والے کا کیا معیار ہونا چاہیے. مومن کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو حت الامکان خیر اور بھلائی کے کاموں سے معمور رکھے, اسی سلسلے میں کسی بھی قسم کی سستی اور ٹال مٹول سے کام نہ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں ان میں سے ایک دعا ہے, میرے ساتھ دہرا لیں, بڑی پیاری دعا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 9 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. پڑھتے ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزنی واعوذ بکا من الاجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبت الرجال. اے اللہ, میں رنج و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں سستی, بزدلی, بخل, قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے, یعنی مجھے ان ساری چیزوں سے بچا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے, قبل اس کے کہ دوسری مشغولیات اور دشواریاں ان کاموں سے غافل کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ جو پہلی روایت ہم نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی تھی اور صحیح مسلم میں بھی, اور آیت جو ہے سورۃ بقرہ 148, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو, جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے. ہر ایک اپنے لیے اگر اس آیت کو نقطہ بنا لے سوچنے کا, کیا فاستبقوا الخیرات, آپ دیکھیے کہ میرے آپ کے پاس نیکیوں کو اویل کرنے کا موقع جو آتا ہے نا, یہ ہمیشہ نہیں رہتا. ایک انسٹنٹ قسم کی نیکی ہوتی ہے, فوری ابھی کرنی پڑے گی, کر لیں گے تو فائدہ ہوگا, اور جب آپ نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا, کہ پھر ہم اس کو یاد بھی کریں گے تو اور ٹائم ضائع کریں گے. اور وہی لوگ نیکیوں کی لیے سبقت کرتے ہیں جو پہلے سے اس پہ نظریں گاڑے رکھے ہوں. یہ جو ہوا مولی ہے نا, مجھے یاد آ رہا ہے اس سال کے دورہ قرآن میں ہم نے اس کو بہت خوبصورتی سے دیکھا تھا کہ میرا وجہ کیا ہے اور میں اس کی طرف کیوں. دوسرے پارے کا تھیم یہی تھا کہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں جلدی کرو, بھاگو دوڑو کیونکہ وقت کم ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو ریس میں مقابلہ کرتے ہیں نا, تو وہ پہلے سے چوک و چوبند کھڑے ہوتے, جو ہی وہ وسل کرتا ہے آدمی تو وہ بھاگ دوڑتے ہیں. تو اگر وسل سن کے کپڑے سیدھے کر رہے ہیں, اچھا اب ذرا اپنے آپ کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں, تو دوسرے تو بہت آگے چلے جائیں گے نا. تو فاستبقوا الخیرات وہی کرے گا جس کی زندگی میں نیکی کا موقع آنے سے پہلے وہ اس کے لیے تیار ہو. اور یاد رکھیے, جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنائیں. کیا؟ کہ جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے. پچھلی زندگی پہ حسرتیں کر کے اگلی زندگی میں نیکیوں کے مواقع جو آئیں اس کو نہ کھوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, آیت 48 سورۃ مائدہ, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، یعنی سبھی توحید پہ ہوتے، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے، پس بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. کیا پتہ چلا کہ لوگ اختلافی بحثوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان اختلافات کا آخری فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہ کہاں ہوگا؟ آگے جا کر بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ نے کرنا فیصلہ. زندگی میں ایک اصول بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت الجھیں. ایک کسی کا جملہ کہ بڑی منزلوں کے راہی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں الجھتے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانے کی، نان ایشوز کو ایشوز بنائیں گے اور جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ ہر چھوٹی بڑی چیز سے الجھیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے. یہاں سے اگر آپ نے لندن جانا ہے، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ گاڑی روک لے، کب پہنچیں گے ادھر؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپریس ٹرینیں ہوتی ہیں، وہ کہیں نہیں رکتی، سیدھا یہاں سے گئیں تو وہیں جا کے پہنچیں گی. اس کے برعکس دوسری طرف کیا ہے، کچھ پیسنجر ٹرینز ہے، چھک 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 چھک، بور ہونے لگتا ہے انسان، وحشت ہوتی ہے، پتہ نہیں کب پہنچیں گے، 3 گنا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اپنے آپ کو پوچھئے، کیا میں ہر معاملے میں دخل دیتی ہوں؟ ہر چیز پہ میری نظر ہوتی، ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اٹکاتی ہوں، ہر ایک کی مجھے فکر ہے. آپ ویسٹرن سٹائل میں ایک چیز ضرور دیکھیں گے، آپ کسی آفس میں چلے جائیں، کسی سے کوئی غلطی سے ہی آپ جا کے پوچھ لیں. ہماری عادت ہے بعض دفعہ جو خریدنے آیا ہوتا ہے ہم اسی سے ہی ریٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ پوچھتے بھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ دکان والا ہے یا خریدار ہے. لیکن آپ دیکھیں کسی سے پوچھیں نا تو وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، وہ ادھر وہ فیلڈ ہے، آئی ڈونٹ نو. آپ بعض دفعہ جو آئلس میں چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں نا، چیزیں جو ریکس میں رکھتے ہیں لوگ، آپ ان سے پرائسز پوچھ رہے ہیں، یا آپ ان سے پوچھتے ہیں فلاں، اوکے آئی ڈونٹ نو، آسک ٹو دا مینیجر، وہاں جاؤ، ہے نا؟ کیونکہ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، ان کو صرف اتنا پتہ ہے جتنا ان کو سکھا دیا ان کی جاب کے لیے، تو اپنے لیے بھی یہی کام رکھیں. آپ یہاں آئیں، میں آئی ہوں، میرا کام ہے پڑھنا پڑھانا، آپ کا کام ہے سننا. چپکے سے بیٹھیے، کان لپیٹ کے باتیں سنیے، انٹریکشن کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے، اور چھٹی ہو تو یہاں سے اٹھیں تو باہر چلے جائیں. بس اس سے زیادہ جب ہم سوچ رہے ہیں نا، کوشچننگ، کننگ کو نا، کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اچھا یہ کون کرے گا، یہ کس کا کام ہے، اس کے اینڈ کیا ہے، اس کا شروع کیا ہے، اچھا یہ پہنچے کیسے، یہ کس کے ساتھ آئے، یہ کدھر گئے، تو آپ نے وہ چھوڑ دیا جو لینا تھا. ہمارے دماغ میں اتنی جگہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہے. آپ دیکھے تو ایک چمچی میں آ جاتا ہے مغز، ایک بکرے کا مغز یا بھیجا بنائیں تو کتنا، ایک آملیٹ جتنا، بکرا خود کتنا بڑا ہوتا ہے. ہمارا بھی بھیجا بہت چھوٹا سا ہے، جب اس کو بہت ساری چیزوں سے بھر لیتے ہیں نا تو کام کا وقت نہیں رہتا، کام کی چیزیں اس میں نہیں آتی. تو فاسطبقوا الخیرات کا ایک پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں، اپنے کام سے کام رکھیں. ہم بعض وقت دوسروں کے معاملات میں دخل دیتے ہیں، کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو پریشان کریں گے، اور کچھ بے جا انفارمیشن چاہتے ہیں، مل گئی آپ کو تو کیا ہوگا، پھر واٹ نیکسٹ، اچھا اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے. بس آپ دیکھیں یہ مسجد ہے نا، آپ اور میں اس مسجد میں جب بھی آئیں ہمارا کیا کام ہے، اذان ہو آئیں اور اللہ کے گھر بیٹھیں، دو نفل پڑھیں آ کے بیٹھ جائیں، جماعت ہو نماز پڑھیں، اگر جمعہ کا خطبہ ہے تو خطبہ سنیں، نماز ادا کریں، چلے جائیں، سیدھا سا کام ہے نا. پرسکون ہوں گے، عبادت ہوگی، تھوڑی سی تھکن کا احساس کم ہو جائے گا. اور آپ اور میں یہاں ہیں، یہ مسجد کس نے بنائی ہے، یہ کرائے کی جگہ ہے یا اپنی ہے، اچھا یہ مسجد کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے، اچھا اس مسجد کے جو امام صاحب ابھی نماز پڑھا رہے تھے یہ کون ہے، یہ پیڑ ہیں کیا ان پیڑ ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں کہ نہیں. آپ مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لیں، مولوی صاحب یہ آپ کو پیسے دیتے ہیں پڑھانے کے، نہیں تو پھر یہ چندہ باکس کیوں رکھتے ہیں، اچھا یہ چندہ لیتے ہیں تو یہ چندہ کدھر جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا بالله، آپ سے زیادہ گندا ٹیسٹ کسی کا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو عبادت کا خشوع تھا نا وہ مٹی میں ڈال دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جب ہم دین کے کاموں میں بھی اس قسم کی بیکار انکوائریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسپرچویلٹی چلی جاتی ہے. कभी आपने मैंने जहाज़ का टिकट लेने के बाद ये सब कुछ पूछा उनसे? पूछ के तो बताएं, पायलट को क्या देते हैं? फ्री चला रहा है कि पैसों का चला रहा है? जहाज़ कितने का है? और ये जो टिकट लिया, ज़रा इसका हमें ब्रेकडाउन तो करके दिखाओ, इसका एयरपोर्ट पे कितना लगा उधर? वो कहेंगे आप घर जाएं, हमें आप जैसे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप इधर 20 हैं ना, तो साथ 20 और भी हैं, और वो हम में से हर एक का शैतान है। और अगर आप 30 हैं ना, तो 30 और भी हैं, 40 हैं तो 40 और भी हैं। शैतान अपनी अटमोस्ट कोशिश करता है बंदे को फांसने की, फंदे बनाता है, फंदे। किसी को तो बारीक से फंदे में डाल लेगा, वो कहते हैं इसने तो मेरे ये सिल्क के फंदे, रेशम के फंदे में फंस के आ जाना, बड़ा प्यारा है ये मुझे, इसको मैं बड़ा प्यारा हूँ। कुछ के लिए मोटी मोटी रस्सियों के फंदे बनाता है, अपने लिए ये गोल बनाए कि मैंने शैतान के किसी फंदे में नहीं आना। उसकी सारी रस्सियाँ बारीक तो बारीक, मोटी भी टूट जाएं, और ये लूप होल्स होते हैं नुकसान के, फस्तबिकुल खैरात से हट के बेकार। और फिर इस तरह, फिर यहाँ से उठेंगे ना, किसी से बैठे जाके रास्ते में गए, सुनाओ किधर गई थी? वो रिसाला मस्जिद गई थी। तुम्हें बताऊँ रिसाला मस्जिद में क्या है? तुम्हें बताऊँ वहाँ की इमाम? तुम्हें बताऊँ वहाँ की जगह? तुम्हें बताऊँ उनका ताल्लुक? भाई आप इतने गंदे टेस्ट के साथ आए कि मस्जिद से उठ के आप जाकर गिप्तें करें, और बाहर जाकर बजाय इसके कि वो इमाम साहब के खुतबे, उनकी बातें, कोई उसमें अल्लाह की बात, कोई तस्कीर, वो दूसरों को बताएं। आम करना है तो ये कीजिए, आप उनकी फजूल बातों को लेकर वहाँ पेश कर रहे हैं, नुकसान क्या होता है इसका? क्या ये आपकी इस कोशिश से रिसाला मस्जिद का नुकसान होगा? इमाम साहब का कोई नुकसान होगा? अगर आप शरण देखें तो सबसे पहला नुकसान तो आपका क्या है कि आपकी अपनी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। और एक लफ्ज़ ज़ुबान से बंदे का, एक छोटा सा माँ यल फिजू, माँ पहले कह के यल फिजू बात में बोला, सूरह काफ़ की आयत 17। मैं कहती हूँ आज अगर आप इसको अपनी गिरा से बांध के जाएं, मेरी ज़ुबान से जो एक लफ्ज़ निकलता है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद, करीब है ये रकीब, या ये जो गर्दन है ना, रकीब कहते हैं वो शख्स जो आपकी गर्दन पे नज़र रखता है, दुश्मन को भी कहते हैं, अल्लाह का नाम है रकीब, कि लिखने वाला हाजिर बाश उस लफ्ज़ को फ़ौरन लिख के आपके नामे अमाल में जाके स्टैम्प कर देता है, जाओ अब करो इंक्वायरियाँ। बेजा बातें करना, बेतुकी बातें करना, बेकार बातें करना, ये आम लोगों का शेव है, कुरान बड़े लोगों का नहीं है। अल्लाह की महफिलों में ऐसा काम नहीं हो सकता, अल्लाह की मस्जिदों में नहीं। ठीक है, बहुत सारे लगे हुए सियासतदानों की धज्जियाँ बखेरने, करने दीजिए उनको, आप भी जाके उनकी कर लें। जो दुनिया के मामलों में कुछ गड़बड़ करते हैं, उनके ऊपर जाके आप भी अपना शौक़ पूरा कर लें। लेकिन शैतान हमारी फस्तबिकुल खैरात की जो दौड़ है ना, वो जल्दी करो, लोगों के ऐबों को देखो, इनकी नीयतों को चेक करो, ये अंदर से क्या है, ये बाहर से क्या है, ये फलां कौन है, इनका ताल्लुक किससे है, ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आप जाके किसी पुलिस स्टेशन पे काम कीजिए, खूब इंक्वायरीज कीजिए, जाइए छापे मारिए, देखिए, आपको तो वो करना चाहिए ना। तो नुकसान क्या होता है कि फिर नेकियों से दौड़ कम होती, यही है इस पूरी आयत का मकसद, कि इख्तलाफात में पढ़कर दूसरे फरीक के सिर्फ तुमने ऐब ही अगर टटोलने हैं, तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा काम अपने ऊपर लेने की ज़रूरत क्या है। फिर आप देखिए अगली आयत इससे भी खूबसूरत है, अल्लाह ताला जन्नत और इसकी नेमतों की रग़बत दिलाते हुए फरमाते हैं, वसारियु इला मग़फिरत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्दुहा अर्दुहा समावातु वल अर्द उद्दत लिलमुत्तकीन, दौड़ कर चलो इस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वसअत ज़मीन व आसमान जैसी है, जो अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई। क्या फील होता है इस आयत को पढ़ के? मुझे तो बिल्कुल वो बस के निकलने का सीन नज़र आता है, कि बस जा रही है और लोग पीछे से चल चल के अब भागने लग गए हैं कि बस ना मिस हो जाए। कभी सोचे इंसान कि उसकी जन्नत मिस हो गई तो क्या होगा? खुद को चुटकी काट के कहें, अल्लाह कभी ना करे ऐसा हो। मैं अपने समेत आप सब, आपकी नस्लों, अपने बड़ों के लिए दुआ करती हूँ, हम में से कोई एक सेकंड के लिए जहन्नुम को ना देखे, लेकिन चांस तो है ना। क्या बनेगा, क्या बनेगा अगर जहन्नुम का धुआं भी बढ़ गया, जहन्नुम की हीट भी पड़ गई? नज़ात लिशवा, कुरान में आता है चेहरे की खाल को भून देगी। अभी जहन्नमी जहन्नुम से कितना दूर होगा, मीलों में फासले हैं, कि उसके चेहरे की खाल गिर के लटक के पिघल के उसके पाँव में गिर जाएगी। देखिए जाना तो बंदों नहीं है ना, मैंने क्या इतनी नेकियां कर ली हैं कि मैं बच गई। हूं मैं फायर प्रूफ? तो अपनी एक एक चीज पे नजर रखनी है, हर वो चीज जो जहन्नुम की तरफ बुलाती है उसको अपनी जिंदगी से हटाना है। एक और दूसरी आयत, साबिक इला मगफिरते में रब्बिकुम व जन्नत नर्दुहा कर दिस समाई वल अर्थ। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मगफिरत और इस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमानों जमीन जैसी है। यहाँ देखिए साबिकु है, सा बी अलिफ है ना, जो ये एक दूसरे के मनों में आता है, बाप मुफाइला एक दूसरे के मुकाबले, ये जो लफ्ज़ है ना मुकाबला मनासरा मुबाहला वो भी इसी में ही है। यानी एक दूसरे से आगे बढ़ो, क्या मतलब? हाँ बढ़ना चाहिए, अबू बकर उमर से, उमर अबू बकर से आगे बढ़ना चाहते थे। नेकियों में मुसाबका करो, ये नहीं कि अगले की नेकियां छोड़ दो, किसी ने किए तुम दो करो, तुमने दो की अगला तीन करे, ये अच्छी बात होती है। दूसरी बात आप देखिए कि रब की मगफरत, क्या पता चला कि इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत और मगफरत के हसूल के लिए मुसारिया, मुसारिया किसको कहते हैं, सुरत से स्विफ्ट जल्दी करना, और मुसाबिका यानी जल्दी करना और सबकत करना इसका हुक्म देकर, दरअसल इनके असबाब यानी ईमान तकवा और अमल सालेह के लिए सबकत करने की ताकीद फरमाई है। इन उमूर में मुकाबला आरई और मुसाबकत का जज्बा मतलूब भी है और पसंदीदा भी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ी ज़ालिक फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, सूरत मुतफ़िफ़ीन आयत 26 है। और इन्हीं उमूर में मुकाबला करने वालों को मुकाबला करना चाहिए। ये जो सारी उला वाली आयत थी ये सूरत आल इमरान 133 है, और साबिक इला मगफिरतिन सूरत हदीद 21 है, और मुतफ़िफ़ीन 26। तीनों आयतों को पढ़कर क्या पता चलता है कि अच्छे कामों में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ये बुरी नहीं होती, हमेशा अच्छे तरीके से इस बात को करें। अल्लाह ताला ने अपने बास बरगजीदा नबियों की तारीफ़ करते हुए फरमाया, सूरत अल-अंबिया आयत 90, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराती व यदूनना रगबं व रहबा व कानू लना खाशईन। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे, हमें रग़बत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके होते थे। ए अल्लाह हमारे अंदर भी ये खूबियाँ डाल दें, हम नेकियों के कामों में दौड़ धूप करें, हम रग़बत और खौफ के साथ पुकारें और अल्लाह के आगे झुक जाएं। आप देखिए कि इसमें बार बार भाग दौड़ और आगे जाने की बात आ रही है ना, तो मुझे वो बुक याद आ गई, आप में से शायद किसी को मौका मिला कि ना सुनने का, रमज़ान के जो आखिरी रातें थी तो उसमें हमने इस साल एक टॉपिक किया, छोटे आमाल बड़ा सवाब। किस किस को मौका मिला वो सेशन सुनने का? सिर्फ चंद लोग हैं, 5-6 लोग, थके होते होंगे उस वक्त सारा दिन के वहाँ। हालांकि वो बुक मैंने खुद पढ़ी, मेरे पास बुक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी ये बुक्स की शिपमेंट आई तो उसमें ये बुक यहाँ आई हुई है। अभी फ्रांस वालों को बताऊँगी तो वो कहेंगे सारी हमारे लिए ले आए, छोटा सा बुकलेट है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसमें वो छोटे छोटे अमल हैं कि जो आप कर लें तो रात भर के क्याम से बड़ा, रोज़े रखने से बड़ा, जिहाद से बड़ा, और सही मुस्तनद हदीसें हैं। बहुत ही छोटा सा बुकलेट है, तो अगर आप लोग एक एक बुकलेट अपने लिए लेते हैं, इसके साथ रिकॉर्डिंग तो अब है, पूरा नहीं हुआ था, आखिरी हिस्सा रह गया, मैं वो अब जाके किसी मौके पे पढ़ा दूंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में वक्त कम है उनके लिए ये चीज़ें तोहफ़ा। और वहाँ जो ख़वातीन आती थी तो मैंने उनसे जब शेयरिंग ली इसके बाद, तो कहती थी कि हमें तो इतने बड़े बड़े वजीफ़ेबाजियाँ बताती हैं, 500 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 1.25 लाख बार, तो ये पढ़ के तो मैं लग रहा है कि बहुत आसान है। यानी मसलन 2 सुन्नतें आप पढ़ें, ईशा की नमाज जमात से और फजर की जमात से पढ़ ले सारी रात का सवाब, अब इसमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट है? लेकिन आज जब देखिए कि हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग लाखों लाखों बार कुरान की एक एक आयत पढ़ते हैं, बस आप देखिए आयत करीमा अमूमन हमारे कल्चर में कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है, 1.25 लाख, और एक पूरी आयत है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, लिखें तो 1.5 लाइन से ज़्यादा बनता है। 1.25 लाख दफ़ा पढ़ने का मतलब होता क्या है? एक पूरा कुरान अगर आप सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास तक पढ़ें तो 6600 से कुछ ऊपर आयते हैं, कुछ 666 कहते हैं, कुछ ऊपर कम कहते हैं, चले हम 6500 आयते लगा लेते हैं। अब 6500 आयते हैं आप पढ़ें तो एक कुरान, तो आप 1.25 लाख पढ़ें तो कितनी कुरान पढ़ने के बराबर है ये वजीफा? 25, 30, 40, बल्कि अभी अगर कैलकुलेटर से खोल के देख लीजिए, बीसियों कुरान पढ़ने के बराबर सिर्फ एक वजीफा लोग करते हैं, और फिर खुद नहीं होता तो फिर सहेलियों को बुलाते हैं, और अल्लाह आपको इतने छोटे छोटे काम दे रहा है। तो इस ज़िंदगी में छोटे छोटे काम कीजिए, फिर इसके बाद ये देखिए, ये फ़ाइनली करीब बुक है, मेरा ख्याल है आप में से हर एक के पास होगी, ये कोर्स में बुक है ना आप लोगों के पास। अब ये किताब, इस साल हमने रमज़ान में एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, हमारी वेबसाइट अगर आप खोलें तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट है कि ये बुक पाकिस्तान से चूँकि छपी, बहुत सारी इकट्ठी छपवाई गई, कि इसमें ना सिर्फ ये कि सूरत फातिहा से लेके पूरे कुरान की तरतीब और दुआएं हैं, बल्कि अगर आप घर जाके बाद में देखिएगा तो इसके शुरू में ये जो 5-6 सफ़े में दुआ क्या है, दुआ और तकदीर, ये सारे लेक्चर्स हैं, उनकी उर्दू लिखी हुई है, यानी इनकी ऑडियो भी मौजूद है, और इसमें दुआ के बारे में, और इसमें मुझे याद आ रहा था कि ये जो तकदीर के बारे में, ये तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा हुआ। फिर एक टॉपिक, अल्लाह मेरी नहीं सुनता, आप इधर पढ़ रहे हैं तो इसको ऑडियो में सुनते हैं तो आपको साथ वो लिखा हुआ भी मिल रहा है। फिर इसके बाद एंड पे इसमें सुन्नतें हैं मुख्तलिफ औकात की, मसलन ये देखिए, खाना खाने की सुन्नतें, और फिर उनके साथ यानी सारों की हदीसें हैं, ये पूरी आधी बुक जो है इसमें सुन्नतें हैं बच्चों को सिखाने के लिए छोटी छोटी। फिर इसी तरह आप देखिए सलाम और अज़ान की, सोने की, जागने की। अब ये एक छोटी सी बुक है, हमने क्या किया था इस दफ़ा, आपको भी इसलिए बताने लगी हूँ कि ये थोड़ी सी बुक्स मैंने देखी हैं आपके पास तो हैं, हमने इसको आम किस तरह करना था कि ये अभी भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम, कि लोगों तक पहुँचाएँ, एक एक बुक एक एक दोस्त के लिए। अब आप कहते हैं कि हमने नहीं ख़रीदनी, आप अपना नाम इधर लिखा के ये बुक फ्री ले सकते हैं आज, एक प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट में जो लोगों ने मनी वर्ल्ड वाइड दी, अभी भी दे रहे हैं, वो लोगों की खुशकिस्मती होगी कि दिए पैसे उन्होंने पता नहीं कहाँ, तो जर्मनी में किसी के घर ही बुक पहुँच गई, किसी मस्जिद में, थोड़ी सी है, ज़्यादा है भी नहीं है, तो आप इसमें हिस्सा भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको लिखा दें कि ये इस बुक के प्रोजेक्ट में मेरा हिस्सा डालें, और अगर हिस्सा नहीं भी डालना चाह रहे तो आप फ्री बुक ले लीजिए और जाके आगे दूसरों को देना चाहें, लेकिन रखिएगा नहीं घर जाके, क्योंकि ये एक अमानत है। तो अब आप देखिए कि जब हम इतनी छोटी सी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे नेकियों के मौके अगर नहीं अवेल करते तो बड़े काम करेंगे, सोचने की बात है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भाग दौड़ लगा दे, और याद रखिए कि एक चीज़ जो आपको मुझे भगाती है ना, वो शौक है। शौक के रास्ते में रात और दिन गुजरने का एहसास ख़त्म हो जाता है। शौक वक्त की कैद से आज़ाद करने वाली बहुत बड़ी ताकत का नाम है। दुआ करें कि अल्लाह हमें शौक लगा दे नेकियों का, इंग्लिश वाला शौक नहीं कि नेकी का मौका सुन के शौक ही लग जाए, उर्दू वाला शौक लग जाए। और यकीन कीजिए जब आपका ये शौक बढ़ेगा ना, तो आपको एक बात की ज़रूर समझ आ जाएगी कि आप कमाने की बजाय खर्च करने में लग गए, दूसरों को देने पे लग गए, अल्लाह के रास्तों पे लगाने वाले बन गए ना, तो ये रास्ता है कि जिस रास्ते पे चलने वाला हमेशा कामयाब होता है, जो इससे हटता है, जो जिसको आप दे रहे हैं वो महरूम है, जिसने दिया है वो हमेशा आता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो दुआ कीजिए कि हमारा हाथ ऊपर वाला हो, अल्लाह ताला हमें इस छोटी सी ज़िंदगी में नेकियों की तौफीक दे। फिर इसी तरह से एक और आयत है, आप देखिए सूरत आल इमरान 114, यूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यामुरून बिल मारूफि व यनहौन अनिल मुनकर व युसारियून फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। ये लोग अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं, ये लोग सालेहीन से हैं। क्या आपको रश्क नहीं आता इन लोगों पे? ख़ास तौर पे आप देखें कि इन आयतों के आगे पीछे अम्बिया कराम का जिक्र होता है, चुने हुए लोग, अबू बकर का भी जिक्र आपको तय कुरान पाक में है, सहाबा में से चंद चुने हुए सहाबी हैं कि जिनके नामों पर कुछ ना कुछ आयतें मंसूब है। तो क्या मैं और आप ये काम अगर करेंगे तो अल्लाह के हाँ आज हमारा नाम नहीं होगा? तो खुलासा कह के अल्लाह ये नहीं कहता कि किसके पास कितनी दौलत है, ये नहीं कहता किसके कितने मुरब्बे हैं, ये नहीं कहता किसका घर कितने गज़ का है, ये कहता है कि ये लोग नेकियों में भागते थे। ये ज़िंदगी का असल खुलासा है कि हम नेकियों की भाग दौड़ करने शुरू हो जाए।